विवेकहीन जो मानुष होई पशु समान जीवन सुख होई। जिसकी बुद्धि में विवेक नहीं है उसका ये मानव जीवन पशु की तरह व्यतीत हो जाता है। तो महाराज जी ये किस विवेक की बात कर रहे हैं? हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, मैं कोई गलत काम नहीं करता, अच्छे काम करता हूं, किसी को दुख नहीं देता हूं और मेरी तुलना में दूसरे लोग जो हैं वो गलत काम करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, मैं पुण्यात्मा हूं और ये पापी लोग हैं, इस प्रकार का हम सोचते हैं और एक मोहर लगा लेते हैं अपने ऊपर, मैं विवेकशील प्राणी हूं। इस विवेक को समझाने के लिए एक विवरण आता है बृहदारण्यक उपनिषद में, वहां ऋषि लिख रहे हैं प्रजापति जिसको सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, उसके द्वारा देव शक्ति प्रकट हुई अर्थात देवता लोग प्रकट हुए और असुर शक्ति प्रकट हुई अर्थात असुर प्रकट हुए। जिसके बारे में जगद्गुरु शंकराचार्य समझा रहे हैं कि कौन से देवता थे और कौन सी असुर शक्तियां थी, तो उन्होंने कहा कि इस देह के अंदर जीव रहते हुए जो जीव निष्काम सेवा और सिमरन के मार्ग पर चलता है उसका देवताओं वाला जीवन है, और जो जीव मन के अंदर जो डिजायर्स उठती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए देह से कर्म करता है संसार में और इंद्रियों के द्वारा उनको भोगता है, तो ऐसा जिसका जीवन है इसको असुर जीवन कहा गया, ये असुर शक्ति है। तो वहां उपनिषद में कहते हैं कि देवताओं ने सोचा कि हम कभी भी असुरों के अधीन ना हो पाए, असुर शक्ति हमारे ऊपर काबिज ना होने पाए, इसके लिए हम क्या करें, तो उनके लिए मार्गदर्शन मिला कि तुम परोपकारी कर्म करो और प्राण के आधार पर चलो। अर्थात जिसको हम कहते हैं कि प्राण के आधार पर चलने का मतलब क्या हुआ कि प्राण जो होता है हम जानते हैं कि ये देह इंद्रियां और मन से मुक्त होता है। आप देखते होंगे कि आपके मन में कोई संकल्प उठता है, कोई विचार उठता है, कोई इच्छा उठती है, तो आप उसकी प्लानिंग करते हो देह से कर्म करके उसको पूर्ण करने की, और संसार का उपयोग करके आप उस कार्य को पूर्ण करते हो, इच्छा को पूर्ण करते हो, तो इसमें कोई प्राण का रोल है क्या? कोई रोल नहीं। तो मन से ये नीचे का सारा संसार है, तो मन से नीचे का जो संसार है इस संसार में जो मनुष्य भी जो जीव भी जीता है जिसका जीवन ही है उसको असुर कहा जाता है, अध्यात्म में उसको आसुरी जीवन कहा जाता है। इसी के लिए महाजी की वाणी कह रही है बिना विवेक मनुष्य जो होई पशु समान जीवन से, उसका जीवन मानव जीवन नहीं है, उसका जीवन पशु के समान। तो विवेक कहां शुरू होता है, विवेक का आधार क्या है, विवेक का आधार मन के ऊपर है। तो इसीलिए जिस प्रजापति की दो संतानें हैं या दो शक्तियां हैं, वो प्रजापति भी मन से ऊपर है। इस प्रजापति का ही एक नाम नाद है, इस प्रजापति का ही एक नाम कुंडलनी है। तो इस देह के अंदर ये जो शक्ति है, उस नाद में या उस कुंडलनी के अंदर ना कोई नाम है ना कोई रूप है, इसलिए वो प्रकृति का मालिक है। तो वो इस प्रकृति का मालिक कैसे है, उससे क्रिएशन हुई है, उससे सारी प्रकृति की रचना हुई है, इसलिए खुद क्या है वो प्राकृति। अर्थात कृति कहते हैं क्रिएशन को, प्रा कहते हैं बिफोर। तो क्रिएशन से पूर्व जो हमारे अंदर स्थिति है जिसमें जीवन है, जो सारी क्रिएशन का मालिक है, जो सारी प्रकृति का मालिक है, तो सारी प्रकृति की रचना जिससे हो रही है, जिससे देवता असुर उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो स्रोत है उसका नाम ही कुंडलनी है, उसी का नाम ही नाद है, वो है नाद रूप परमेश्वर। देखिए आप उसको वहां तक पहुंचोगे कैसे, क्योंकि मनुष्य की तो मजबूरी है, जब से वो पैदा हुआ है देह लेकर तब से वो मन को ही जानता है, मन की इच्छाओं को जानता है, मन के विचारों को जानता है, और जैसा ऐसा संसारी लोग उसको सिखाते हैं वैसे वैसे वो क्रियाकलाप करना शुरू कर देता है। और उसी में कहता है, एक व्यक्ति कहता है मैं अच्छा हूं, एक कहता है मैं बुरा हूं। लेकिन यदि विवेक की दृष्टि से देखें तो दोनों ही बुरे हैं, अच्छे लोग भी बुरे हैं और बुरे तो बुरे हैं हम जानते हैं। तो ये वाणी अच्छे लोगों को भी इस आसुरी संपदा वाले ही कह रहे हैं, क्योंकि इनका भी उद्देश्य कुछ नहीं है, संसार के सुख भोगना है, उसके लिए विद्या का अर्जन करना है, उसी के लिए पैसा कमाना है, उसी के लिए परिवार बसाना है, उसी के लिए सोसाइटी अटेंड करनी है, सोशल लाइफ भी हमारी उसी स्वार्थ को लेकर है, उससे ऊपर हमारी कोई सोच नहीं। तो सत्पुरुष कहते हैं, या यूं कहें वो प्रजापति कहता है, वास्तव में सत्पुरुष प्रजापति से भी ऊपर है। मूल सत्ता तो वही है, प्रजापति की उत्पत्ति भी उससे हुई है जिसको हम आत्मा कह देते हैं, जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं। और प्रजापति से फिर इस प्रकृति की उत्पन्न हुई है, ये कृति उत्पन्न हुई है, तो जिसमें ये दो शक्तियां हैं, देव शक्ति और असुर शक्ति। तो जो दैवी जीवन है, यदि आपने दैवी संपदा अर्जन करनी है तो उसका आधार क्या है, फिर दो ही आधार हैं। वो दो आधार कहां लिखे होते हैं, वो सत्पुरुष के द्वारा जो वाणी प्रकट होती है, सत्पुरुष के द्वारा जो शास्त्रों की रचना होती है, वहां ये चीज लिखी होती है कि मनुष्य जन्म लेकर तूने निष्काम सेवा करनी है, इसी को ही यज्ञ कर्म कहते हैं। अर्थात तेरा जीवन यज्ञ कर्म करने के लिए है, भोग कर्म करने के लिए नहीं, तूने यज्ञ कर्म करने हैं और प्राण का आधार पकड़ना है, जिसको महाजी कहते हैं प्रेमी तूने नाम सिमरन करना है। इसलिए महाजी जब दीक्षा दिया करते थे खुद, तो वह एक नाम देते थे जो श्वास के साथ जपा जाता था, लेकिन उन्होंने उसके लिए कंडीशन लगाई थी, यह केवल गुरु दे सकता है, गुरु ब्रह्म है, ये उसमें शक्ति है, उसकी कृपा जिस पर होती है, उसका ग्रेस जिसको मिलता है, वही उधर चलने का पात्र बन पाता है। तो इसीलिए अल्टीमेटली एक ही चीज होती है, मैंने ब्रह्म की ही बात माननी है, या कहूं कि गुरु की ही बात माननी है, या शास्त्र की ही बात माननी है, बात एक ही। क्योंकि ये किताब का कोई रचयिता, इस वाणी का रचयिता कोई मनुष्य नहीं है। महाराजी तो बड़ा स्पष्ट कहा, वो शब्द रूप परमेश्वर खुद वाणी रूप में प्रकट होकर जीवों का कल्याण करता है। माँ जी ने कभी नहीं कहा कि मैं इसका रचयिता हूं। तो जिस ईश्वर तक हम पहुंचना चाहते हैं उस ईश्वर का क्या आदेश है, इसको मैंने शास्त्रों के द्वारा, वाणी के द्वारा बारीकी से अध्ययन करना होता है। और सत्संग का क्या काम है, सत्संग का यही काम है कि जो लोग अपनी बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते तो सत्संग के माध्यम से उस चीज को, उस शास्त्रों के मर्म को, शास्त्रों के अर्थ को सही समझने का मौका उनको मिलता है, उसके द्वारा वो सीख सकते हैं। इसलिए सत्संग भी केवल वो होता है जो सीधा सीधा शास्त्रों के अर्थ को समझाता है या उनके मर्म को समझाता है, उस प्रकार का मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद मार्गदर्शन कर रहा है कि जिस प्रजापति से ये देवता और ये आसुरी शक्ति प्रकट हुई है, तो देवता देव शक्ति कौन सी है, वो मन के ऊपर है। आसुरी शक्ति कौन सी है, वो मन के नीचे। तो जिसका इच्छा परायण जीवन है, इच्छाओं के पूर्ण करने के मार्ग को जो जीवन समझ रहा है, मनुष्य जीवन व्यतीत कर रहा है, उसका पतन लाजमी है। वो आज साधारण मनुष्य है, कल को वो पापी बन जाएगा, घोर पापी बन जाएगा। जिसके लिए महाजी कह रहे हैं, प्रेमी ये जो जीवन है इसको रजोगुणी जीवन कहा जाता है। संसार के सुख भोगने को आदर्श समझना, जीवन का लक्ष्य समझना, इसको रजोगुणी जीवन कहा जाता है। और ये तमोगुण में धीरे धीरे बदल जाता है। तो इससे यदि बचना है तो फिर कौन सा जीवन है? फिर एक ही जीवन है कि मैंने गुरु का मार्गदर्शन सीखना है, या यूं कहिए कि शास्त्र का मार्गदर्शन सीखना। वो क्या कह रहा है, किस कर्म को करने की बात कर रहा है? तो वो कह रहा है तूने मन के ऊपर का जीवन जीना है। तो मन के ऊपर क्या है, प्राण है। मन के ऊपर क्या है, कुंडलनी है। मन के ऊपर क्या है, वो नाक है, जो इस प्रकृति का स्रोत है। जहां प्रकृति का ये रूप ही नहीं है, जिसको हम नाम रूप कहते हैं। सारा संसार नाम रूप गुण कर्म से बना है, लेकिन नाम वो चीज है, गुरु का मार्गदर्शन वो चीज है जो आपको नाम रूप गुण कर्म के ऊपर ले जाए। तो इसलिए देवताओं ने सोचा कि हम इन असुरों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, या असुरों के वश में कैसे नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने फिर प्राण का आधार लिया, सिमरन का आधार लिया, मेडिटेशन का आधार लिया। और संसार में जब देह है तो उसका उपयोग तो करोगे, तो देह के द्वारा उन्होंने निष्काम कर्म, जिसको महाजी परोपकारी कर्म कह रहे हैं, बिना किसी ईगो के, बिना किसी कर्तापन के भाव के, उन्होंने उस यज्ञ रूप में उस कर्म को करना शुरू। तो यदि मैंने जीवन में विवेक धारण करके सही जीवन जीना है तो विवेक ये है। शास्त्र दो ही चीजों को विवेक कहते हैं, शरीर से जो कर्म करना वो परोपकारी कर्म करना, और यदि जीना मानव जीवन तो ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना, तब तो वो विवेकशील मनुष्य है, नहीं तो वो अविवेकी मनुष्य है। संसार में अच्छा मनुष्य भी है दूसरों की तुलना में, तभी वो अविवेकी ही है। अध्यात्म उसको अच्छा कहते ही नहीं, ये हम लोगों की परिभाषा है, ये अच्छा आदमी है, ये खराब है। जो माता पिता की सेवा करे कहते हैं बेटा बड़ा अच्छा है, जो माता पिता को दुख दे कहते हैं बेटा बहुत बुरा है। तो ये परिभाषा ही स्वार्थ के आधार पर है, ये विवेकवानों की परिभाषा नहीं। तो इसीलिए जब तक हम इस विज्ञान को सही नहीं समझते, तब तक हम सही मानव जीवन व्यतीत करने लायक नहीं बन पाते। तो अब बताइए, यदि अपना अपना हम विश्लेषण करके देखें तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और आप यही पाएंगे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मैक्सिमम एफर्ट है, जो मैक्सिमम कोशिश है जीने के तरीके की, वो क्या है, वासना की पूर्ति। अर्थात हम आसुरी जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं जो हमको पतन की ओर ले जाए। हमारा सारा कर्म सारी सोच मन के नीचे की है, मन के ऊपर की नहीं है। तो मन के ऊपर जाने का रास्ता ही कोई नहीं है। आपने सत्संग विचार भी सुन लिया, ये बात भी सुन ली आपने कि देव मार्ग पर चलने के लिए दो ही रास्ते हैं, निष्काम सेवा, परोपकारी कर्म और प्रभु की याद, प्रभु का सिमरन। तो ऊपर कौन ले जाएगा? निष्काम कर्म क्या करता है? मन की वासना को कमजोर करता है। और सिमरन क्या करता है? सिमरन आपको प्रजापति बना देता है, जहां ना देवता है ना असुर है। तो ये आपको अंदर नाद में स्थित कर देगा या कुंडलनी में स्थित कर देगा। तो अब बताइए कि यदि मैंने गुरु की बात ही नहीं मानी, गुरु धारण करने का पर्पज ही एक होता है कि गुरु की बात मानकर उसकी आज्ञा पालन करके मैं अंतर्यामी प्रभु की याद करना शुरू करूं। तो महाराज जी को यदि हम गुरु मानते हैं तो महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट लिखकर दिया, वाणी उसके लिए प्रकट हुई कि महामंत्र अर्थात जो सिद्ध मंत्र है, जो गुरु मंत्र है, इसका जाप कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो जब अवतार आता है, जब सदगुरु आता है, वो ब्रह्म ही है, तो वो संसार के हर सारे मनुष्यों की व्यवस्था करके जाता है। लेकिन हम लोग मनमुखी जीव हैं, हम गुरु की बात को नहीं ध्यान से पढ़ने की समझने की कोशिश करते, हम लोक मत में आ जाते हैं और उनके मत के अनुसार अपनी साधना भी बना लेते हैं और अपना जीने का तरीका भी बना लेते हैं। उससे क्या होता है, जो अंदर जाना था अपने मन के ऊपर, वो स्थिति आपकी जीवन में कभी नहीं आ पाती। पहले ही आपने गुरु की अवज्ञा कर दी, अंदर जाओगे कैसे? ये आपका कर्तापन काम कर रहा है, ये समर्पण काम नहीं कर रहा, ये रास्ता समर्पण का है। महाराज ने एक बार कहा था, प्रेमी ये देव मार्ग समर्पण से ही प्रारंभ होता है और समर्पण में ही ये इसका अंत हो जाता है, अर्थात ये जीव समर्पण के द्वारा ही ब्रह्म रूप हो जाता है। विचार करके देखो आप जरा, जब ये मनुष्य अंदर उस प्रजापति में स्थित होता है या कुंडलनी में स्थित होता है, या यूं कह लें कि नादरो परमेश्वर में स्थित होता है, वहां विचार तो संभव ही नहीं, मन का अस्तित्व वहां है ही नहीं, तो मन तो नीचे छूट गया। अब बताइए कि जहां विचार करने में आप समर्थ ही नहीं हो तो आगे जाओगे कैसे आप? तो इसीलिए वहां केवल समर्पण है, प्रभु तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, तू ही सब कुछ है। ये निश्चय इसका बहुत पहले परिपक्व हो चुका है, ना उसको संसार का भय है। यदि मौत का भय है भी तो एक ही भय है कि प्रभु ऐसा ना हो कि अंतिम मंजिल मिलने से पहले ही यह देह छूट जाए, इसे तू कृपा कर, इस काम को जल्दी कर, ताकि मन के बंधन से मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी देह में मुक्त हो जाऊं, इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं। तो इसलिए उसका उस प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता, यहां तक कि वो अपनी साधना का भी कर्ता नहीं बनता। उसका समर्पण इतना गहरा हो जाता है कि साधना का भी वो करता नहीं बनता, वो साधक नहीं रहता, वो फिर मुमुक्षु हो जाता है। इसको केवल मोक्ष चाहिए, और वो जानता है ये मोक्ष मैं अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकता, ये केवल वो परमेश्वर ही दे सकता है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं। गुरु वो नहीं है जो कर्म करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, गुरु वो है जो जिसका मन भस्म हो चुका, जिसका मन परमानेंट भस्म हो चुका, अब बताइए जब मन परमानेंट भस्म हो जाए तो क्या बचेगा? तो ब्रह्म ही तो बचेगा और कुछ नहीं बचता, क्योंकि यदि देव शक्तियां हैं, देवता हैं, तो असुर भी साथ में, क्योंकि प्रजापति से ये दोनों साथ पैदा हुए, तो ना वहां देवता है ना वहां असुर है, तो इन दोनों के ऊपर कौन है? इन दोनों के ऊपर केवल प्रभु है, उनकी प्रभुता है, केवल वो दिव्य शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वही गुरु है, वही मेरा वास्तव में गुरु है। उसने ये मंत्र प्रकट किया है, उसने ये वाणी प्रकट की है, तो वाणी के द्वारा वो मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, वही ब्रह्म मेरा मार्गदर्शन कर रहा है कि तू ये मानव जन्म लेकर तू निष्काम सेवा करना सीख, अर्थात दूसरों के लिए जीना सीख, उनके कल्याण के लिए कर्म कर, उसी प्रकार कर जैसा कि ये वाणी तुमको सिखा रही है, ये ईश्वर तुमको सिखा रहा है। और उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए तूने अंदर भी जाना है, कर्म के लिए तो देह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अंदर जाने के लिए देह को शांत करना पड़ेगा, तूने सिमरन करना है, तूने अपने मन को ही सिमरन में होम करना है। तो इसीलिए वो प्रभु मंत्र बनकर प्रकट होते हैं, ऐसे मंत्रों को महामंत्र कहा जाता है। ये गुरु की शक्ति है, किसी को शरीर रूप में गुरु मिल जाए, भेंट हो जाए कहीं उसकी, तो देखने में तो शरीर रूप गुरु से भेंट हुई है, लेकिन वास्तव में उस देह के द्वारा वो ब्रह्म शक्ति ही काम कर रही है, वो ब्रह्म ही काम कर रहा है। इसीलिए जब शिष्य की खुद भेंट होती है तो वो ब्रह्म नाम रूप में अवतार लेकर शिष्य के अंदर प्रवेश करता है, जिसको दीक्षा कहा जाता है। तो वो ब्रह्म दीक्षा होती है, उसको गुरु दीक्षा कहते हैं। लेकिन यदि उससे भेंट ना हो फिर क्या करोगे आप? तो देखना पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए क्या व्यवस्था बनाई है, क्योंकि गुरु तो जगत गुरु है ना, फिर वो सारे जगत के लिए प्रकट हुआ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे लिए कोई व्यवस्था ही ना बनाई हो। तो इसलिए वाणी को जब पढ़ो तो साफ वहां महामंत्र की महिमा लिखी हुई है, वाणी के रूप में लिखी हुई है कि ये मंत्र सर्वसिद्धि दाता है, अर्थात सर्वसिद्धि का मतलब होता है जहां तेरी कामना का पूर्ण खात्मा हो जाता है, जहां कामना हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाती है, तो ये वो मंत्र है जो तेरी कामना को भस्म कर देता है। इसीलिए वाणी कह रही है महामंत्र की महिमा की, कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत्यो, उस ब्रह्म से तेरा मिलन होगा, मंगत तत् अक्षर नित गाइये प्रभु दर्शन होए से। तो कलह कलेश सब जानते हैं मन के अंदर होते हैं, इसलिए ये मंत्र मन की सत्ता को खत्म कर देता है, इसलिए ये ब्रह्म से मिलाता है। तो ये जो देव मार्ग है ये विवेक का मार्ग है, तो इसीलिए जो इस विवेक को जीवन में धारण करके मनुष्य जन्म व्यतीत करता है वो तो सतोगुण का अधिकारी है, सतोगुण को प्राप्त करता है, और यदि फाइनल मंजिल नहीं भी मिली तो अगला जन्म जब इसको मिलता है तो इसकी सतोगुणी वृत्ति होती है, सतोगुणी स्वभाव होता है, इसको दैवी संपदा कहते हैं, तो वो संपदा में विवेक शामिल होता है। तो इसीलिए बचपन से ही वो निष्काम सेवा का और प्रभु सिमरन का मार्ग अपनाता है, तो जो कसर इस जन्म में रह गई थी वो अगले जन्म में पूर्ण कर लेता है, जैसा महाराज जी का जीवन था, जैसा विवेकानंद का जीवन था, जैसा रामकृष्ण परमहंस का जीवन, इन्होंने मनुष्य जन्म तो लिया लेकिन बचपन से ही किस ओर चल पड़े। कहीं देखा आपने इन तीनों के जीवन में भोग विलास? तो ये विवेकशील प्राणी का जीवन है, बचपन से उसके जीवन का एक ही उद्देश्य होता है प्रभु प्राप्त। तो इसीलिए ऐसा नहीं है वो कमाई नहीं करेगा, यदि शादी हुई तो परिवार नहीं बसाएगा, या उनके लिए जो पढ़ाई लिखाई नहीं कराएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में उसकी बुद्धि में ये निर्णय बड़ा स्पष्ट होता है, ये कर्तव्य कर्म है जो मैंने बेयर मिनिमम करना है, बेयर मिनिमम क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक समय मैंने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाना है, इसके लिए शरीर की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, मात्र इतना वो टाइम इन्वेस्ट करता है, और वो भी प्रभु आज्ञा में, प्रभु तूने जो देना है वो देगा, उसकी चिंता नहीं करता वो, प्रभु के परायण होकर, प्रभु के समर्पित होकर वो अंदर का रास्ता पकड़ता है, बाहर केवल वो जीविका इतनी ही कमाता है, उसमें टाइम इतना ही खर्च करता है ताकि मूलभूत आवश्यकता जो जीवन की है वो पूर्ण हो जाए, इसलिए उसका जीवन फिर सत्वगुणी जीवन होता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।